रुद्राक्ष को दिव्या के खिलाफ सबूत मिल चुका था। वो उस ट्रांसमीटर के साथ मोक्ष के पास पहुंचा और मोक्ष और रुद्राक्ष ने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली थी। आलिया को सब बताते हुए दिव्या किसी ऐसे शख्स का जिक्र कर रही थी जो लोगों को जेल से भगाता था। उसने पहले भी ये काम किए थे और अब भी वो आलिया को बाहर निकालने जा रहा था। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मोक्ष के चेहरे के भाव गंभीर थे। उसने सिर हिलाकर कहा, कौन हो सकता है वो शख्स? हमें इसे जल्द से जल्द किसी ईमानदार ऑफिसर तक पहुंचाना होगा। ये जो भी है बहुत गलत कर रहा है। इसके चक्कर में काफी सारे क्रिमिनल लोगों की नजरों में मर चुके हैं और वो आज़ाद जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जो गुनाह किए हैं उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, ना कि एक आज़ाद जिंदगी। तुम ठीक कह रहे हो, रुद्राक्ष ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि जेल में जितने भी हादसे हुए थे या जिन भी क्रिमिनल्स की हादसों में मौत हुई थी वो अभी तक जिंदा होंगे। एक आदमी अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकता, जरूर उसकी जेल में कुछ सेटिंग की हुई होगी। हाँ, वो तो है, मोक्ष ने जवाब दिया और फिर उस रिकॉर्डिंग की एक और कॉपी बनाई। मोक्ष ने उसे अपने पास रखते हुए कहा, ये मेरे काम आएगी। मैं जिनके लिए काम करता हूँ उन तक ये पहुँचाऊँगा, तो वो इस मामले में ज़रूर कुछ करेंगे। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ पल रुककर बोला, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन आलिया खुराना को मैं बाहर नहीं आने दूंगा। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। वैसे आपको ईशानी के बारे में कुछ पता चला? एक्सीडेंट हुए 15 दिन के आसपास हो गए हैं और ईशानी का कुछ पता नहीं चल रहा है, मोक्ष ने उदास चेहरे के साथ कहा। रुद्राक्ष का सारा ध्यान इस वक्त खुराना फैमिली को बर्बाद करने पर था। खुराना फैमिली इस वक्त कमज़ोर थी और यही सही मौका था उन पर वार करके ख़त्म करने का। रुद्राक्ष ने अपने आदमियों को ईशानी को ढूंढने के लिए लगा रखा था। वो अकेले सब संभाल रहा था। रुद्राक्ष को चुप देखकर मोक्ष गुस्से में बोला, आप जो भी कर रहे हैं मैं उसके लिए रोकूंगा नहीं, उल्टा आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस तरह ईशानी के मामले में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। आप मुझे भी कुछ करने नहीं दे रहे हैं और खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? मेरे आदमी को पता चला है कि आखिरी बार वो उरी बॉर्डर के आसपास देखी गई थी। हादसे के लगभग एक दिन बाद एक ट्रक उरी बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान गया था और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में काफी लोग मारे गए थे, लेकिन जो जिंदा थे उनमें ईशानी नहीं थी, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। ये सब उसके इन्फॉर्मर ने उसे बताया था। इतना सब कुछ हो गया और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं भाई? मोक्ष ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। क्या बताता कि मैं ईशानी को नहीं ढूंढ पाया? पता नहीं क्यों मोक्ष पर दिल में एक उम्मीद है कि वो खुद मेरे पास आ जाएगी। शायद तभी मैं इतना बेफिक्र हूँ। दिल के कोने से हमेशा एक आवाज़ आती है कि वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है, बस मुझ तक नहीं पहुँच पा रही, रुद्राक्ष ने उतरे हुए चेहरे के साथ जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि वो ईशानी को लेकर पूरी तरह बेखबर हो गया था, पर कुछ पता न चलने पर थोड़ी बहुत नाउम्मीदी आना जायज़ था। रुद्राक्ष और मोक्ष बात कर ही रहे थे कि तभी रुद्राक्ष के मोबाइल पर एक कॉल आया। वो मोक्ष से दूर गया और कॉल रिसीव करके बोला, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जो भी चल रहा है उतने में तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि अब हमारे बीच में भी कुछ नहीं हो सकता। ये कॉल संजना का था। वो रुद्राक्ष को काफ़ी टाइम से कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। संजना ने धीमी और उदास आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें अभी उम्मीद है वो वापस आएगी? ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम्हारे ऊपर जो तुम उसके लिए अपनी फैमिली तक से बगावत करने पर उतर आए हो? रुद्राक्ष, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर बीच में वो कहाँ से आ गई? अगर तुम्हें सच सुनना ही है तो सुनो, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था। अगर शादी करने जा रहा था तो मेरे दादू के दिए हुए कमिटमेंट की वजह से। अब मेरा उस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो कमिटमेंट भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम चाहो तो नव्यम से शादी कर सकती हो, रुद्राक्ष ने गुस्से में जवाब दिया। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें किसी तरह की धमकी नहीं देना चाहती, तभी प्यार से समझाने के लिए कॉल कर रही हूँ, वरना तुम मेरे डैड को अच्छे से जानते हो, संजना ने जवाब दिया। पहले वो काफ़ी प्यार से काम ले रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के इस तरह गुस्सा होने पर वो भी शांत नहीं रही। रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। इधर संजना ने स्पीकर ऑन कर रखा था। जब रुद्राक्ष और संजना की बातें राहुल मित्तल ने सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम चिंता मत करो, वो लड़की मर चुकी है। रुद्राक्ष खुराना को कैसे लाइन पर लाना है ये भी मुझे अच्छे से पता है, राहुल मित्तल ने संजना को आश्वासन देते हुए कहा। उसके बाद राहुल वहां से चला गया और तुरंत विक्रांत को कॉल करके कहा, विक्रांत आखिर चल क्या रहा है? तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, वो मेरी संजना के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, जबकि उन दोनों की शादी होना तय हुआ था। उसे समझाओ वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। समझ ही तो नहीं रहा वो राहुल, मैं तो चाहता हूँ कि कोई उसे ठीक से लाइन पर लेकर आए, मेरे लिए भी अलग से मुसीबतें खड़ी कर रहा है। मेरे सारे प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिए उसने मुझसे, ऐसे ही चलता रहा तो मैं रोड पर आ जाऊँगा, विक्रांत ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा।
राहुल मित्तल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मुझे दो दिन का टाइम दो, मैं संजना के साथ इंडिया आ रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ फिर रुद्राक्ष लाइन पर कैसे नहीं आता है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। राहुल मित्तल कोई सीधा आदमी नहीं था, उसके पहले से ही अंडरवर्ल्ड से रिलेशन थे, अब वो उनके दम पर रुद्राक्ष को ब्लैकमेल करने का सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ चैन इस वक्त अपने घर पर पहुंचा, उसे कैसे भी करके ईशानी को जल्द से जल्द वापस इंडिया भेजना था। चैन ने अपने घर पर कदम रखा, वो एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी जो आज भी काफी भव्य और खूबसूरत लगती थी। वैसे तो उसके डैड ड्यूटी पर होते थे, लेकिन उसे पता चला था कि वो घर आए हुए हैं, इसलिए बात करने के लिए चैन घर पर ही आया। जैसे ही उसकी अम्मी शहनाज ने उसे देखा तो वो जल्दी से उसके पास आई। उनकी फैमिली बाकी पाकिस्तानी फैमिली के कंपैरिजन में काफी मॉडर्न और खुले विचारों वाली थी। शहनाज ने चैन के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम घर आ रहे थे, इस बारे में बता देते तो मैं खास तैयारी करवा देती। हम बस अब्बू से मिलने के लिए आए थे, हमें कुछ खास काम था। कहाँ है वो, उनसे बात करनी है, चैन ने सीधे सीधे कहा। ठीक है, कर लो बात, पर पहले फ्रेश तो हो जाओ। वैसे तो मैं बता दूं कि तुम्हारे अब्बू का मूड काफी बिगड़ा हुआ है, इंडिया से कुछ लोग स्मगलिंग करके सामान लेकर आ रहे थे, इलीगल तरीके से आवाजाही भी हो रही थी, बस उन्हें उनका पता चल गया और उसके बाद से ही वो गुस्सा है और इस गैंग को पकड़ना चाहते हैं। वैसे बता दूं कि हम पर भी गुस्सा उतर चुका है, तो सोच समझ कर मिलने जाना। शहनाज ने उसके डैड शारिक इकबाल के रवैये के बारे में पहले ही बता दिया था। चैन भी उनसे कुछ इसी मामले में बात करने आया था, वो ईशानी को लीगल तरीके से इंडिया नहीं भेज सकते थे और इलीगल तरीके से भेजने के लिए भी सपोर्ट होना जरूरी था। ऐसे में उसने अपने डैड की मदद लेने का सोचा, लेकिन वो तो पहले से ही गुस्सा थे।
चैन ने अपने मन में कहा, चाहे जो भी हो, बात तो करनी होगी, इसके लिए हमें सजा और गुस्सा दोनों मंजूर है, लेकिन हम उस लड़की को और हमारे पास रखने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। गलती से भी पकड़े गए तो अंजाम वाकई दर्दनाक होगा। चैन ने जैसे तैसे करके हिम्मत की और ईशानी के लिए अपने डैड से बात करने के लिए चाह रहा था। जैसे ही चैन ने उनके कमरे के बाहर कदम रखा, शारिक किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। वो गुस्से में बोले, असलम, हमने तुम्हें पहले कहा था कि हम इस मामले में किसी को माफ नहीं कर सकते। अगर सामने हमारा बेटा भी खड़ा होगा तो हम उसे भी उतनी ही सजा देंगे। जल्द से जल्द उसे पकड़ो और पता करो कि वो लड़कियों को स्मगल क्यों कर रहा था, हमें आगे भी जवाब देना होता है। शारिक उसी दिन की बात कर रहे थे जिस दिन ईशानी गलती से पाकिस्तान पहुंची थी। उस दिन और भी लड़कियां इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी, जो कि इल्लीगल तरीके से लाई गई थी। शारिक को गुस्से में देखकर चैन के कदम वहीं पर रुक गए थे और अब वो सोच रहा था कि उसे अपने पापा से बात करनी चाहिए या नहीं। क्या लगता है, चैन अपने डैड से बात करके ईशानी को वापस भेज पाएगा या नहीं? रुद्राक्ष के काफी सारे दुश्मन खड़े हो रहे हैं। कहानी के साथ बने रहिए और पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।